व्यक्त बाप दादा की प्रसन्न मुलाकात। पहला ग्रुप, सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? विश्व का कल्याण करने वाली आत्माएं पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी। तो सर्व खजानों से भरपूर हो, कितने खजाने हैं? बहुत है ना। तो सब खजानों से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। तो फुल है या कभी कोई कम भी हो जाता है, है लेकिन समय पर कार्य में लगा सके, ये चेकिंग सदा करते रहो। तो समय पर यूज कर सकते हो कि समय बीत जाता है पीछे सोचते हो, फिर क्या कहना पड़े, ऐसा करते थे, ऐसा होता था, तो थे और था होता है, था थे। क्या चेक करना है कि समय पर जो खजाना चाहिए वो खजाना कार्य में लगा या नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती है। तो इतने बिजी रहते हो, सबसे ज्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है? क्योंकि जब नाम ही है विश्व कल्याणकारी तो यह ऑक्यूपेशन हो गया ना, तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना रह नहीं सकते। जो सदा बिजी है और सदा रहेंगे, तो सदा बिजी है और सदा रहेंगे, सारा दिन बुद्धि में यह रहता है, कोई आत्मा मिले और संदेश दे, अच्छा है। भारतवासी अपने विधि से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और मलेशिया वाले अपने विधि से, रशिया वाले अपनी विधि से, लेकिन सभी याद और सेवा की लगन में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या सुना, कौन है हम? विश्व कल्याणकारी बाप के, विश्व कल्याणकारी बच्चे, ऐसा अनुभव करते हो। उनकी विशेषता क्या होगी? दो तीन विशेषता सुनाई। सबसे पहले खजानों से संपन्न, खजानों से भरपूर हो, कितने खजाने हैं? बहुत है। तो सब खजानों से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी ना हो, तब कहेंगे भरपूर। पहला खजाना ज्ञान, कहाँ से प्राप्त करेंगे? मुरलियों से, और जहाँ भी मिल जाए, और मुरली अव्यक्त साकार, और कौन सा माध्यम है? नहीं, ज्ञान प्राप्त कहाँ से करेंगे? और ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया जाता है?
बुद्धि कल्याण क्लियर हो,
जिसके पास हो उसी से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान है कहाँ?
ज्ञान
सागर के पास। ज्ञान आत्मा में ही समाया हुआ है, बाबा से मतलब ना, तो वो तो हो गया। ज्ञान लेना है ज्ञान सागर से, मुरलियों से, साकार अव्यक्त ज्ञान लेना है अपने अनुभव से। ज्ञान सब यहाँ ही है, कहीं बाहर से लेना नहीं है। पहली बात, सब कुछ वही है, आत्मा में ही सारा कुछ है। ऊपर सोना है, ऊपर मिट्टी है, मिट्टी को खाली हटाना है, वो सारा इमर्ज करना है बस। वो है वही, आत्मा में जो चीज एक बार चली जाती है वो जाती नहीं है वहां से, वो हमेशा वो स्मृति रहती है। सारा ज्ञान आत्मा में ही है। संपूर्णता है वो बाहर से नहीं लानी है, आत्मा में ही है। दिव्यता है वो बाहर से नहीं लानी है, अंदर ही है। विवेकानंद ने एक डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है शिक्षा की, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा वो एक प्रक्रिया है जिससे कि जो ज्ञान है वो जो अंदर पहले ही समाया हुआ है उसको अभिव्यक्त करना, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, जो संपूर्णता है, जो ज्ञान है मैनिफेस्टेशन, वो बाहर लाना। वो वही है, उसको बाहर से नहीं लाना है, संपूर्णता अंदर ही है। उसी तरह रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। दिव्यता अंदर आत्मा में पहले ही निहित है, उसको बाहर अभिव्यक्त करना, यह है धर्म। और संपूर्णता अंदर ही है, उसको अभिव्यक्त करना, यह है शिक्षा, एजुकेशन, ज्ञान। तो ज्ञान अंदर ही समाया हुआ है, उसको केवल बाहर लाना है। आत्मा में सब कुछ है, कहीं किधर से लेने की आवश्यकता नहीं है। सुनना पढ़ना ये तो स्मृतियों को जागृत करना है। आत्मा रही हुई है सतयुग त्रेता में, वो दिव्यता उसमें ही समाई हुई है, वो कहीं और से दिव्यता लानी नहीं है, उसी में दिव्यता है। जो अदिव्य है उसको हटाना है बस। मूर्ति तो है, हटाना किसको है? जो व्यर्थ पत्थर है उसको हटाना है। ज्ञान अज्ञान, कल पूछा था ना, कल बाबा ने मुरली में शुरुआत में, ज्ञानी किसको कहे और अज्ञानी किसको कहे? उत्तर दिया नहीं, छोड़ दिया उसको ऐसे ही। कल की मुरली में शुरुआत ही वहां से है, कौन अज्ञानी और कौन ज्ञानी है तुम अब जानते हो। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो अज्ञानी, और जो अपने आप को अज्ञानी समझते हैं वही ज्ञानी। जितना ज्ञान बढ़ता है, समझ में आता है, कुछ भी नहीं जाना, ये है निशानी ज्ञान की, ज्ञानी की। जितना पढ़ रहे हैं और जितनी गहराई में जा रहे हैं, मुरलियों के समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लेना अभी उन्नति का मार्ग खुला है। जितना पढ़ रहे हैं और जितना अध्ययन कर रहे हैं और जितना सुना रहे हैं, जितना समझ रहे हैं, और ऐसा अनुभव हो रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। द मोर आई नो, द मोर आई नो दैट आई नो नॉट। जितना मैं जानता हूं मुझे ये पता चलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, ये है ज्ञानी की अवस्था। जितना ही जितना गहरे जाते हैं समझ में आता है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये अवस्था आ जाए तो समझ लेना अभी ज्ञान आना धीरे धीरे शुरू हुआ है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान समाया हुआ है, बस जो व्यर्थ है उसको हटा देना है। अगर देखा जाए तो कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वहां है। कोई आत्मा केवल योग में ही लग जाए तो उसे कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। एक रीति से केवल योग 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 करते ही ज्ञान सूर्य को स्पर्श करना केवल और आ जाना, स्पर्श करना, उसके सानिध्य में रहना, आत्मा स्वतः ही ज्ञानी बन जाएगी। परंतु वो वैसा योग हो निरंतर वाला तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर वैसा होता नहीं ना, इसके लिए सब कुछ करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान, वाणियों से लेना है, अव्यक्त वाणी, साकार वाणी, अनुभव, स्वयं के अनुभव, दूसरों के अनुभव, जीवन के अनुभव, हर चीज से। और योग, योग एक विधि है ज्ञान को प्राप्त करने की। अशरीरी अवस्था में ही ज्ञान बुद्धि में समाता है। केवल पढ़ लिया, याद कर लिया, स्मृति में रख लिया पर्याप्त नहीं है। उस ज्ञान को एकाग्र चित्त, दत्त चित्त होकर उसको स्मरण करना, तो ही वो बुद्धि में समाता है। केवल एक ही वाक्य अगर ले लिया जाए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, इसका विस्तार करना मन ही मन, एकाग्र चित्त होकर प्रकृति के सानिध्य में या फिर योग के कक्ष में बाबा के सामने बैठकर ज्ञान की ही पॉइंट्स याद करने का प्रयत्न करना। जरूरी नहीं है कि हर समय अशरीरी ही बनना है, केवल वहां बैठकर ज्ञान का मनन करना, ज्ञान का चिंतन करना, तो नई नई प्रेरणाएं आएगी। तीनों लोकों की सैर करने के लिए कल दो बातें बताई थी कल बाबा ने वरदान में, कौन सी? नहीं, क्या चाहिए? वॉइसलेस चाहिए। अभी वॉइसलेस अर्थात निर्विकारिता की अवस्था, निर्विकारिता की अवस्था के लिए संपूर्ण ज्ञान चाहिए। तो निर्विकारिता की अवस्था आ जाए और रिफाइंड बुद्धि चाहिए, ये दो चीजें है तो सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद, वैसी याद, और फिर रौनक भरी वो सूक्ष्म लोक की सैर कर सकते हो। तीनों लोकों की सैर बिना रिफाइंड बुद्धि के और बिना निर्विकारिता की स्टेज के नहीं हो सकती। ये दोनों स्टेज के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान को बुद्धि में समाने देना, टाइम दो उसको थोड़ा, कि जो पढ़ रहे हैं बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है, थोड़ा ही पढ़ना, पर वो थोड़ा ही पढ़ा हुआ बुद्धि में धीरे धीरे समाए, उसको अंदर जाने देना, थोड़ा सा ही लेके उसको बैठ के। बाबा का कमरा सबसे बेस्ट जगह है ज्ञान का चिंतन करने का। अमृत वेला अशरीरी हो जाओ, शाम को अशरीरी हो जाओ, बीच बीच का जो समय है वहां जाकर बैठना और याद करना आज क्या था और मैं उसको जीवन में कैसे लाऊं। तो सबसे पहला खजाना ज्ञान के खजाने से भरपूर करना है आत्मा को, ज्ञान, फिर गुणों के खजानों से भरपूर करना है, वो भी सभी खजाने का सागर परमात्मा है। परम धाम में जाकर इस तरह से योग करना, ज्ञान के सागर को स्पर्श किया, सारा ज्ञान मुझ में समा गया बिना पढ़े। गुणों के सागर को स्पर्श किया, सारे गुण मुझ में समा गए। शक्तियां, सर्वशक्तिवान को केवल स्पर्श किया और सर्वशक्तियां मुझ में समा गई। या फिर वो एक सागर है, उसकी बहुत सारी लहरें हैं। अब मैं आत्मा उस सागर में अंदर अंदर समाती जा रही हूं। एक एक पत्ते है जैसी, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, निर्णय की शक्ति पर पहुंचा और सारी निर्णय शक्ति मुझ में आ गई है, सहन शक्ति मुझ में आ गई है, एक एक शक्तियां मुझ में आ गई है, ज्ञान गुण शक्तियां। चौथा खजाना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। मुरलियों से कुछ ऐसी पॉइंट्स निकालनी है जो बहुत शक्तिशाली है, और केवल लिखना नहीं, उनको याद रखना, और याद रख के उसको मन ही मन रिवाइज करना बार बार। एक दिन की जो मुरली है वो केवल किसी क्लास में जाकर वहां पर रिवाइज करने की बात नहीं है या सुना देने की बात नहीं है, वो पॉइंट, ये मुरली और ये हमारा मन, हमारे मन के संकल्प और मुरली, ये पॉइंट उसमें समा जाए, ये पॉइंट यहां से निकलकर उन संकल्पों का एक भाग बन जाए, वो हमारे विचार बन जाए। मुरली अलग, हम अलग नहीं, हमारे विचार और मुरली की वो एक शक्तिशाली पॉइंट, वहां से निकलकर वो हमारे अंदर ऐसी समा जाए कि फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही याद हो जाएगी। एक होता है रटना चीजों को, रटी हुई चीजें ज्यादा समय नहीं रह सकती। एक मुरली दे दी जाए, कहा कि इसको रिवाइज कराना है, तो उसको रटते रहे रटते रहे रटते रहे, पूरी रट लिया, जैसे ही रिवाइज करा दी क्लास, रिवाइज करा दी काम पूरा। अभी आगे थोड़ी सोचना है, जैसे एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चे, पढ़ते 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 पूरा रटते 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 रटते, जैसे एग्जाम देते हैं उसके बाद कुछ भी पूछो कुछ भी याद नहीं है, वैसा नहीं है। वो पॉइंट हमारे विचारों का एक हिस्सा बन जाए, वो इतना गहराई में उसमें समा जाए कि जैसे हमें कोई अपना नाम पूछता है, हमारा घर पूछता है, लौकिक घर का पता पूछता है, स्वतः ही बता देते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो उधर अंतर्मन सबकॉन्शियस में चला गया है। इस ज्ञान को सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, कॉन्शियस माइंड में नहीं, इतना वो धीरे धीरे, इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। हमारे पास टाइम का है, मुरली पढ़ने के लिए कितना टाइम है, फटाफट पढ़ लिया और हो गया, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, फटाफट 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 क्लास में गए, मुरली सुना दिया, अगर कोई क्लास है तो पॉइंट सुनाओ तो फटाफट फटाफट सुना दिया। सेंटरों पे ऐसा ही होता है ना, मुरली के बाद में बहने पॉइंट पूछती है, हाँ बताओ 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 बताओ, सब अपना अपना पॉइंट एक याद करके रखते थे, सुना दिया कि हो गया काम पूरा। अगर हमारा पॉइंट किसी और ने सुना है तो मुसीबत है फिर पहले ही बड़ी मुश्किल से याद किया होता है एक पॉइंट, अगर किसी ने सुना दिया वो तो गए काम से, फिर ढूंढो और कहीं, फिर एक ही पॉइंट रह जाते हैं, आत्मा समझकर बाप को याद करो। कई कई भाई मैंने यही पॉइंट सुना थे सेंट्रो, जब सारे ही चले जाते हाथ से कड़ी मुश्किल से पकड़ के लाते हैं और वो गए तो बस। वो पॉइंट हमारे जीवन, हमारे विचार, हमारे संकल्प, हमारी भावनाएं, उस विचारों से भी श्रेष्ठ है, भावनाओं में आ जाए वो, इमोशंस में आ जाए, फीलिंग्स में आ जाए वो। फीलिंग्स में कोई बात चली जाती है फिर वो तो भूल, भूलने का नाम ही नहीं। 10 साल पहले किसी ने बुरा कहा था वो अब तक याद है, 10 साल पहले किसी ने निंदा की थी क्योंकि हमने उस पर टाइम दिया था ना, हमने चिंतन किया था उस पॉइंट के बारे में, उसने हमारी निंदा की, फिर हमने बाबा को सुनाया, फिर रात में सोते सोते भी पॉइंट याद रखी थी, कैसे वो हमारी निंदा करता है, कितनी गहराई में जाने के लिए कितना समय दिया था। वैसे ज्ञान की पॉइंट जाने के लिए क्या समय देते हैं कि आज बाबा ने सोते 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 कोई याद करते हैं, आज बाबा ने क्या क्या कहा, ये कहा फिर ये कहा फिर ये कहा, ये सब नहीं करते, वो केवल सुना दो हो गया काम पूरा। वो पॉइंट अंदर समा जाए, समय दो, जैसा स्पंज होता है उसको रख दो पानी में तो पूरा गीला हो जाएगा, पर टाइम लगेगा। तुरंत गीला होता है क्या? नहीं होता है, टाइम लगता है उसको। मन को भी डुबा के रखना है ज्ञान में और थोड़ा समय के लिए तो वो गीला होगा। ज्ञान, गुण, शक्तियां, श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, महान संकल्पों को, महान संकल्प भी खजाना है तो महान संकल्पों का खजाना। फिर कौन सा खजाना है? खुशी का खजाना। खुशी के खजाने को समाने दो। दुआएं रिजल्ट है श्रेष्ठ कर्म का, तो वो भी एक खजाना है, उसको भी आने दो। पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म, संतुष्टता भी एक खजाना है, पवित्रता खजाना है, इस पवित्रता के खजाने को अंदर सफाने दो। कल मुरली में था हद की पवित्रता और बेहद की पवित्रता। बेहद की पवित्रता वो है जो देवेंद्र भाई, बेहद की बाप किसी और किसी की याद नहीं और कोई संबंध नहीं जोड़ना, नहीं तो मुसीबत, बच्चा आ गया तो अभी एक्स्ट्रा याद एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, पहले ही जो याद किया है उसको भूलना है, अभी नए चालू हो गया। तो ये है हद बेहद, ये बात बताई थी। तो पवित्रता का खजाना, संतुष्टता का खजाना, क्या मैं संतुष्ट हूँ? एक है स्वयं से संतुष्ट, एक है दूसरों से संतुष्ट, एक है हम बाप से संतुष्ट, तीन। फिर है दूसरे हम से संतुष्ट, चौथा, पांचवा बाप हमसे संतुष्ट, सब तरह से संतुष्टता। संतुष्टता के खजानों को संभालना। बोल का एक खजाना है, बोल कैसे थे, शक्तिशाली थे या व्यर्थ थे? तो ये सारे ही खजाने, ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, संकल्प, समय। कल कहा ना, तुम्हारा समय बहुत अमूल्य है, तुम व्यर्थ नहीं करना है तुम्हें अपने समय को। ऐसे ही समय चला गया बातों में, संगम युग का, तो क्या कहेंगे। पवित्रता, खुशी, दुआएं, पुण्य कर्म, बोल, संतुष्टता, ये सारे ही खजाने से जो भरपूर है, जो संपन्न है वही दे सकते, जो विपन्न है वो दे नहीं सकते। जो स्वयं दरिद्र है वो कहां से दूसरों को देंगे? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा? आश्वासन और सांत्वना खजाना अंदर है, गड़ा हुआ है, खोदना है उसे। वो कहानी सुनाई थी ना भिखारी की, सारी उम्र भीख मांगता रहा अपनी कुटिया में, सालों साल भीख मांगता रहा, पर अंदर से एक कामना थी सम्राट बनने की, कभी बन नहीं पाया। भिखारी कैसे बन सकता है सम्राट? हाँ, बड़ा भिखारी बन गया, प्रसिद्ध भिखारी जरूर बन गया, पर सम्राट नहीं बन पाया। भीख ही मांगता रहा, भीख ही मांगता रहा, भीख ही मांगता रहा, और एक दिन मर गया। लोगों ने देखा कितनी ये व्यर्थ में यहाँ कुटिया है, हटाओ इस कुटिया को। कुटिया को हटा दिया, उसके सामान को हटा दिया। लोगों ने कहा इसने जमीन भी अपवित्र कर रखी है, जमीन को भी थोड़ा बाहर करते। जमीन को बाहर कर किया तो देखा अशर्फिया, रत्न खजानों की हंडिया है नीचे, खोदा नहीं, बस मांगता ही रहा। खजाना वही था जहां वो 40 साल भीख मांगता रहा, वहीं पर खजाना था। खजाना अंदर ही है, खोदना है उसे, है वो निकलेगा। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा वो है जो सर्व खजानों से भरपूर है। कितने खजाने हैं? बहुत खजाने हैं। खजानों की लिस्ट, समान की लिस्ट, अधिकार की लिस्ट, उपकारों की लिस्ट, सब लिस्ट सामने हो, प्राप्तियों की लिस्ट, पहले क्या थे अब क्या है इसकी लिस्ट, तो सब खजानों से भरपूर आत्मा ही औरों को दे सकेगी। मतलब दाता कौन बन सकता है जो भरपूर है, संपन्न है, रहमदिल है। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, हाफ नॉलेज इज वर्स देन इग्नोरेंस कहा जाता है। अगर आधा ज्ञान है तो वो वर्स देन इग्नोरेंस है, वो अज्ञान से भी खराब चीज है वो। जैसे वो अभिमन्यु की कहानी है ना, आधा ज्ञान था उसके पास, फंस गया वो और मर गया। इसकी क्या कसौटी है कि हमारे पास ज्ञान पूर्ण है। अगर हमारे पास ज्ञान पूर्ण है तो हर परिस्थिति का उत्तर हमारे पास चाहिए, हर समस्या का समाधान, हर सवाल का जवाब तुरंत आ जाना चाहिए, सोचने की भी आवश्यकता नहीं। परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, हमें हर परिस्थिति के बारे में सोचना पड़ता है। हर परिस्थिति हमें यह एहसास दिलाती है कि हम अभी अपूर्ण है। ज्ञान तो एक प्रोसेस है, लंबी, सारे जीवन भर की साधना है, वो एक दिन की बात नहीं है। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हो गया है, कोई नहीं कह सकता। फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी ना हो, तब कहेंगे भरपूर। तो फुल हो या कभी कभी कम भी हो जाता है, लेकिन अब ये दूसरी बात, उसके आगे की चीज, समय पर कार्य में लगा सके। ये भी ज्ञान अर्थात केवल पढ़ना, याद करना, बोलना, यहां तक सीमित नहीं है। परिस्थिति आई उसको कार्य में लगाना, लगा सके, ये चेकिंग सदा करते रहो। कौन सी चेकिंग? ज्ञान जो है उसको कार्य में लगाया। सहनशीलता पर बड़े बड़े भाषण दिए और किसी ने कुछ कह दिया और
सारा दिन मूड ऑफ
तो उसको सहनशीलता नहीं कहेंगे। मतलब हमने अभी सहनशीलता पर 100 भाषण दे दिए अभी तक, पर परिस्थिति ऐसी आई कि सहन नहीं कर पाए, इसका मतलब अभी भी सहनशीलता पूरा समझा नहीं है उसको। अभी भी टाइम, अभी भी कुछ तो बाकी है। पवित्रता की 10 साल से साधना कर रहे, 20 साल से साधना कर रहे, फिर भी कोई दृश्य, कोई चित्र, कोई किताब, कोई संस्मरण, कोई स्मृति आत्मा को हलचल में ला दे, इंद्रियों को विचलित कर दे, तो अभी ब्रह्मचर्य को पूरा साधा नहीं है। ब्रह्मचर्य की साधना अभी भी अपूर्ण है। तो समय पर यूज कर सकते हो कि समय बीत जाता है, पीछे पूछते सोचते रहते हो, फिर क्या कहना पड़ता है, ऐसा करते थे, ऐसा होता था, तो था और थे में चले जाते हो। था और थे, ऐसा करना था, ऐसा होता था। क्या चेक करना है कि समय पर जो खजाना चाहिए वो खजाना कार्य में लगा या नहीं। ये स्थूल बातें नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं है ये बाबा, ये जीवन की बातों को इस खजाने के रूप से बात कर रहा है। जैसे कि कोई वो स्थूल वस्तु है, जैसे धन है, उसको कार्य में लगाना ये आसान है, पर इन खजानों को कार्य में लगाना, समय का कैसे खजाना है, व्यर्थ कर रहे, पर उस समय ये नहीं आता है मन में कि कोई खजाना व्यर्थ जा रहा है। उस समय लगता है ठीक है, चल रहा है, वो खजाना है। अपने मन को बताओ कि ये खजाना है, अपने मन को समझाओ कि पवित्रता खजाना है, अपने मन को समझाओ कि ये दुआ खजाना है, दुआएं प्राप्त करनी है, ये कार्य करूंगा तो बद्दुआएं मिलेगी। परंतु अहंकार मानता नहीं है, उसको करना ही है वो कार्य, चाहे बद्दुआएं भी मिल जाए, वो राजी हो जाता है उस समय। पवित्रता और अपवित्रता का युद्ध है, बहुत कल का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास चाहिए। पता है ये कर्म किए तो पश्चाताप करना पड़ेगा, परंतु वो वासना का वेग इतना तीव्र होता है कि आत्मा अपने जन्म जन्म या लंबे समय से की हुई साधना को भी दांव पर लगा देती है, राजी हो जाती है अपना सब कुछ गवा देने को, अपना ज्ञान और योग और तपस्या, वो वासना का वेग इतना तीव्र होता है कि आत्मा वशीभूत हो जाती है। तो ये खजाने को कार्य में लगाया नहीं, इसका मतलब एक एक खजाने को देखो और सोचो कि ये खजाना है, समय खजाना है, ज्ञान खजाना है, गुण खजाना है, शक्तियां खजाने हैं, संकल्प खजाना है, संतुष्टता खजाना है, ये सारे आठ खजाने और बोल खजाना है, ये सारे खजाने हैं। विश्व कल्याणकारी आत्मा सदा हर समय मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मना चाहे संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। अभी तीसरी विशेषता उनकी है बिजी, सबसे पहला ज्ञान से भरपूर, दूसरा ज्ञान खजाने से भरपूर, दूसरा खजाने को कार्य में लगाना, और तीसरा वो सदा बिजी रहती है। किसमें बिजी? विश्व कल्याण में। तो इतने बिजी रहते हो, सबसे ज्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है? शिव बाबा, क्योंकि जब नाम ही है विश्व कल्याण करी तो ये ऑक्यूपेशन हो गया ना, तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना रह नहीं सकते, तो सदा बिजी है और सदा रहेंगे। सारा दिन बुद्धि में क्या रहता है? कोई आत्मा मिले और संदेश दे, क्या बिजी रहते हो? किस बात में बिजी? कोई भी मिले और छोड़ेंगे नहीं, बड़ा ही बेरहमी से कल्याण करूंगा, बड़ा ही बेरहमी से रहम करना, अर्थात कुमुद बहन बेरहमी से रहम करना, अर्थात रहम करना, अर्थात
परिभाषा नहीं मिल रही।
सब जगह ज्ञान सुनकर आया है व्यक्ति, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, और जब यहाँ पहुँचा ओम शांति भवन, चाहे उसका कल्याण हो ना हो, हमें अपना कल्याण करना ही है, सारा ही ज्ञान पकड़ के उसको सुनाना, एक एक चीज उसको जाना है, बोलेंगे रुको 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 और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। केवल ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं है, कोई यहाँ आ जाए तो जरूरी नहीं उसको पकड़ के पूरा एक एक ही एक घंटे में सात दिन का सारा ही बता देना, थोड़ा सा बताओ। जरूरी नहीं है कि ज्ञान सुनाना ही सेवा है, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे वाइब्रेशंस भी बहुत कुछ कर देते हैं, तुम्हारा जो लिबास, तुम्हारा पोशाक, तुम्हारी सादगी का भी उसके ऊपर प्रभाव, तुम कम बोलो और ना बोलो वो भी उनके ऊपर प्रभाव डाल देगा, उनको तो पता है ये 20 साल से इधर है, फिर भी देखो थोड़ा ही बोला, बोल बहुत सकता था, ये भी देखते हैं लोग, वो जास्ती प्रभाव पड़ता है, थोड़ा ही बता दिया बस। ऐसा नहीं कि हर एक चीज, पूरा यज्ञ की शुरुआत कहाँ से हुई और ब्रह्मा कौन है और अब तक क्या क्या हुआ और कितनी शाखाएं हैं और हम क्या क्या करते हैं ये बता देना, इससे कई लोग इसको निगेटिव भी लेते हैं, अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी संस्था में जाओ, अगर कोई हम किसी संस्था में चले जाए और वहां के संस्था वाले लोग एक एक चीज समझाते रहे, हम रुकेंगे कि वहां हमारी संस्था ये साल में स्थापन हुई, फिर हमने ये किया, फिर हमको ये अवार्ड मिले, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने इतनी सेवाएं की, हमको क्या लगेगा? सेवाओं का वर्णन कर रहे, कितना अहंकार है। सेवाएं तो गुप्त होती है, तो जरूरी नहीं है कि ये है, बड़ी बेरहमी से रहम करना, जरूरी नहीं है पकड़ के सबको, ज्ञान ही पहले सुनो वो कहाँ कहाँ से आया है। अगर वो पहली बार यहीं पर पहुंचा है तो थोड़ा बता सकते हैं, पर वो घूम के आया है, पीस पार्क में भी जाके आया है, वहां पर भी लोगों ने उसको समझाया है, वो उधर शांतिवन में भी किसी ने पकड़ के एक दिन पूरा घुमाया है, अभी भी घुमाया है, अभी भी घुमाया, और फिर आपके पास आया है वो। हाँ, और बताओ, अगर वो बोले कि और बताओ और समझाओ तो समझाओ, जरूरी नहीं है उसको पकड़ के समझाना ही है। हर आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा को ज्ञान नहीं सुनना है, ज्ञान तो वो इंटरनेट से सुन लेते, पढ़ सकते, देख सकते। ब्रह्मा आज तो ऐसी स्थिति है कि ब्रह्मा कुमारी ने आने से पहले इंटरनेट में सब कुछ पढ़ा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है, सारा कुछ पढ़ के आते हैं। और ये तक नहीं, इंटरनेट पे डालो कॉन्ट्रोवर्सीज इन ब्रह्मा कुमारी, स्कैंडल्स इन ब्रह्मा कुमारी, तो जो जो खराब चीजें हुई है वो ज्यादा पढ़ के आते कि ये संस्था में ये अब तक ऐसा ऐसा हुआ है, सारा पढ़ के आते। नेट पे डालो तो इंटरनेट पे सब आ जाता है, यहाँ ये हुआ था, वहां वो हुआ था, यहाँ उसने आत्महत्या की थी और यहाँ पुलिस केस हुआ था, ये सब पढ़ के फिर आपके सामने आ रहा है। हमको क्या पता वो क्या पढ़ के आ रहा है, लोग बहुत होशियार है। जैसे हमारे पेशेंट आते, पहले ही वो बीमारी के बारे में सारा पढ़ के आते, एक है वो पेशेंट की जो कुछ भी पढ़ के नहीं आता है, उसको भाई ये दे दो तो हाँ भाई ठीक हो जाए, कितना विश्वास है और विश्वास उसको ठीक कर देता है। कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, वो सब कुछ पढ़ के आते हैं, अगर कुछ लिखो तो वो क्या है, ये क्या है, इससे क्या होगा, उससे वो साइड इफेक्ट, इससे ये साइड इफेक्ट, इतना पूछते की बात मत पूछो, वो फिर ठीक होगा नहीं होगा पता नहीं। ये संकल्प ही उसको ठीक होने नहीं देते। बेचारा वो गरीब पेशेंट आता है, उसको कहा भी ये दो गोलियां ले लो, ठीक हो जाता है, बस भूल भी जाता है, उसको पता ही नहीं हो गोलियों में क्या था। और ये पूछती है कौन से ग्रुप की गोली है, ये अभी आई है, कब आई है मार्केट में, इसका लेटेस्ट कंपनी कौन सी अच्छी है, ब्रांड कौन सा अच्छा है, इससे साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इससे ये क्या होता है, उससे वो क्या होता है, ये गोली का वो गोली के साथ क्या, हजार प्रश्न पूछते हैं। ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है इनको। तो लोग पहले से बहुत कुछ पढ़ के आ जाते हैं इधर, और हम उसको फिर अपना सारा ही वो सुनाते रहे कि ऐसा ऐसा ऐसा, अंदर से वो सुन तो रहे पर अंदर से मन में निगेटिव संकल्प चलते रहते हैं उनके। हाँ सब ये सब नहीं, इसके लिए पहले बाबा कहते ना अच्छा डॉक्टर कौन है, वरदान था ना अभी, जो नब्स को देख ले, उसमें वो किस लिए आया है, उसको इंटरेस्ट कितना है। हमारे पास एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट आया है जिसको कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाना है और एग्जाम पास करनी है, हम उसको सुना रहे हैं ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है, ब्रह्मा ने ब्रह्मचर्य और ब्रह्माचारी कैसे बनना है, अरे उसको वो चाहिए ही नहीं। हमारे पास एक व्यक्ति आ रहा है जो अति धार्मिक है और जिसको केवल अध्यात्म में रुचि और परमात्मा को प्राप्त करना है, हम उसको बता रहे हैं हमारी संस्था के इतने इतने सेंटर है, हमने ये सेवा की हमने, अरे उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको केवल भगवान को पाना है उसकी रुचि। कोई एक आ रहा है जिसको केवल ब्रह्मचर्य के बारे में जानना है, हम उसको सुना रहे हमारे इतने कैसेट्स हैं, हमारे गीत लता मंगेशकर इसने गाए हैं उसने गाए हैं, हम उनको ऐसा करते हैं हम वैसा, हमने ये बड़ा प्रोग्राम किया, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको ब्रह्मचर्य चाहिए, उसको परमात्मा चाहिए, उसको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर कोई आ रहा है उसको खाली मैनेजमेंट चाहिए, हमारा ऑफिस है उसमें मुझे मेरे अंदर के लोग हैं उनको मैनेज कैसा करना है, हम उसको सुना है कि ब्रह्मा ने कैसे विरोध किया, जो यज्ञ में क्या क्या विरोध हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे यज्ञ से ना तुम्हारे विरोध से, उसको क्या चाहिए, और वो भी बताएगा नहीं, केवल पूछो वो किस बैकग्राउंड से आया, इसके पहले की ज्ञान सुना दो उसको, थोड़ा सा तो बैकग्राउंड पता चाहिए। बहुत बड़ा ग्रुप है तो ठीक है सुना दो, पर थोड़ा, बहुत नहीं सुनाना है, ज्यादा काम करना है। ग्रुप सामने खड़ा है, हम आत्मिक स्थिति में खड़े हैं, सोच रहे कि आत्माएं आई है, ये परमात्मा संतान है, इन सब को टचिंग हो जाए, उनको स्मृति आ जाए कि ये आत्माएं कौन है, ये यहाँ आई है, शायद वापस कब ना आएगी यहाँ पर, अब पहुंची है बड़ी मुश्किल से, इन आत्माओं की आत्मा में वो चेतना जागृत हो जाए बस, चाहे वो ज्ञान अब ले या सेंटर पे ले या 10 साल के बाद ले, परंतु बीज डाल दो वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन और संकल्प का। जरूरी नहीं है कि एक घंटा उसको पकड़ के पूरा ही उसको ऐसे सुनाओ कि बाद में ऐसे भागेगा कि पीछे भी नहीं देखेगा, अगर इसके बाद कभी कोई ब्रह्मा कुमारी का नाम भी कहे कि भागा दूर, चलो वो भी कल्याण तो देखो है ही है, कल्याण तो कैसे भी है क्योंकि हट्टी एक ही है, आना तो इधर ही है, परंतु तो ये एक बात है, बेरहमी से रहम। वाइब्रेशन दे दो, कुछ एक फूल दे दो, कोई एक किताब दे दो, कोई बैग कुछ, कोई गिफ्ट दे दो छोटी मोटी, बस वो किताब की गिफ्ट देना सबसे अच्छी है, कैसेट और सीडी और किताब, ये दो भी दे दो सबसे बेस्ट चीज है, वो जाके सुनेगा, कुछ हमने बोला नहीं, वो सीडी में है जो वो सुन लेगा, वो किताब में है वो पढ़ लेगा, पूछो किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, वो कहेगा हाँ, तुरंत दे दो एक किताब, वो पढ़ेगा, वो सारा कुछ लिखा है उसमें, हमें कुछ करना नहीं है ज्यादा। तो सबसे पहला खजाने से भरपूर और देना, दूसरा कार्य में लगाना, और तीसरा बिजी रहना। कोई आत्मा मिले और संदेश दे, अच्छा है, भारतवासी अपनी विधि से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और मलेशिया वाले अपनी विधि से, रशिया वाले अपनी विधि से, लेकिन सभी याद और सेवा की लगन में आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। कल से थोड़ा वापस मम्मा का 5 दिन, वो जो उसमें उस किताब में अव्य